ओम शांति।
कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। जाने के दिन तो आ गए, कल जाना है। दिल नहीं है, रह जाइए फिर। फिर आपके परिवार वाले भाग के आ जाएंगे, है ना, आपको ले जाने के लिए। फिर आएंगे, है ना। हम हमेशा कहते हैं यहाँ आए बादल भरने के लिए, फिर वहां जाएंगे बरस करके, फिर आएंगे भरने के लिए, है ना। तो यहाँ आए, आत्मा को रिचार्ज किया, फिर वहां जाकर के दूसरों के आत्माओं को चार्ज किया, फिर यहाँ आएंगे फिर से अपने को रिचार्ज करने के लिए, है ना। ये रिचार्ज करने के लिए स्टेशन है। तो रोज सुबह और शाम मेडिटेशन सीख रहे हैं, राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं, और इसी इच्छा से आप सभी यहाँ आए भी हैं, है ना। तो राजयोग आप करना क्यों चाहते हैं? मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं? सुख शांति की अनुभूति करने के लिए और जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने आप की पहचान, मन को काबू करने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए। अपने पर काबू करना, परमात्मा के साथ जुड़ना, तो ये सब करने से मिलेगा क्या? जीवन के बारे में समझना, तो ये सब समझ करने के बाद तो क्या मिलेगा? शांति मिलेगी, सुख शांति मिलेगी। और मैं कौन हूं वो समझने से क्या होगा? समझना भी क्यों है? समझना भी क्यों है? अभी तक नहीं मालूम तो अभी चल रहा है ना जिंदगी, जीवन कट रही है। फिर जानना क्यों है सब बातों के बारे में? देह और देही के बारे में समझने के लिए। वो समझ के करेंगे क्या? क्यों समझना चाहते हैं? आए क्यों हैं? जिंदगी का मकसद क्या है? आत्माओं का मकसद क्या है? हियर मन ऑन अर्थ, ओके। जन्म क्यों लिया है? जन्म का पर्पस क्या है? यस, ठीक है। तो ये सब समझ आ जाएगा, लेकिन मुख्यतः मेडिटेशन करने से होता क्या है? किसी ने कहा सुख और शांति चाहिए। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो शांति की अनुभूति तो होता ही है, यथार्थ रूप से राइट वे में अगर मेडिटेट करते हैं तो शांति की अनुभूति आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप कर्म क्षेत्र पर जाएंगे, व्यवहार में आना शुरू करेंगे, वो जो शांति की अनुभूति हुई थी यहां, फिर वो आप सस्टेन कर पाए वहां? सस्टेन कर पाए नहीं, कुछ ना कुछ असर होगा ही। ये जो भी हम सोचते हैं सुख शांति की अनुभूति, वो अल्पकाल का होता है, और सुख शांति भी एक बाय प्रोडक्ट है। ऐसे नहीं है कि सुख शांति आपको आपको कहे, अगर कहे निर्णय करने की शक्ति के बिना आप सुख शांति की अनुभूति कर सकते हैं जिंदगी में? आपके अंदर निर्णय करने की शक्ति है ही नहीं, क्या सही है क्या सही नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर क्या आप सुख शांति की अनुभूति करेंगे जिंदगी में? सहन शक्ति नहीं है तो क्या सुख शांति की अनुभूति होगी? सामना करने की शक्ति नहीं है, कोई भी चैलेंजेस आए तो डर गए, बहुत सेंसिटिव है, किसने कुछ बोला तो रो पड़े, किसने कुछ बोला तो फिर डिप्रेशन में चले गए, किसने कुछ बोला तो गुस्से में आ गए, तो सामना करने की शक्ति ही नहीं है, तो क्या फिर सुख शांति की अनुभूति होगी जिंदगी में? नहीं है। तो ये जो सुख शांति के बारे में हम सोच रहे हैं ना, तो हर व्यक्ति ये चाहता है जिंदगी में, है ना। तो इसके कारण से कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, कोई प्रोफेशन के पीछे भाग रहा है, कोई संबंधों के पीछे भाग रहा है, शायद वहां मुझे सुख शांति मिलेगा, है ना। लेकिन यहां मेडिटेशन भी जब हम करते हैं, सुख शांति की अनुभूति स्थायी रूप से परमानेंट लंबे काल के लिए हम अनुभव तब कर सकते हैं जीवन में, जब अपने अंदर शक्तियों की धारणा होगी। शक्ति नहीं है तो फिर हम सुख शांति अनुभव नहीं कर सकते। जैसे अगर आप चाहे कि हम सभी चाहते हैं कि हम हेल्दी रहे, है ना, हेल्थ के हेल्दी रहे। तो हेल्थ की परिभाषा क्या है? जितना हमारे अंदर इम्यूनिटी की शक्ति ज्यादा होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति ज्यादा है, उतना हम हेल्दी रहेंगे, है ना। तो ऐसे ही आत्मा को सशक्त करना है या आत्मा के अंदर वो सुख शांति की अनुभूति करनी है तो आत्मा को सशक्त बनाना होगा, सर्वशक्तियों से संपन्न बनाना होगा, आत्मा के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना होगा, तब जाकर के बाहर का जो असर है, जर्म्स का असर, वायरसेस का असर आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता। नेगेटिविटी के वायरसेस, नेगेटिविटी के जो जर्म्स है उसका असर फिर आत्मा के ऊपर नहीं पड़ सकता। तो इसीलिए राज्यों के द्वारा मुख्यतः हम अष्ट शक्तियों की प्राप्ति करते हैं। चल रहा है, नहीं चल रहा। जैसे देवियों की, अच्छा नहीं, ये यूज किया फिर। जैसे देवियों की पूजा जब हम करते हैं तो उनको कितने भुजाएं दिखाते हैं? अष्ट भुजाधारी दिखाते हैं। तो अष्ट भुजाएं, जो कोई ऐसे इंसान है इस संसार में जिनको है ऐसा, वैसे तो एक भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिंगर आ गया, एक्स्ट्रा कुछ चीज आ गया तो कहते हैं ये अबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। तो लेकिन देवियों की तो पूजा होती है, तो इसका मतलब है ये जो अष्ट भुजाएं हैं ये कोई ऐसे प्रैक्टिकली या फिजिकली किसी का नहीं है, एक प्रतीक है, समझ की बात है। हर भुजा में, हर हाथ में एक एक शस्त्र है, और शस्त्र का अर्थ है शक्तियां, और इन शस्त्रों का प्रयोग शक्तियां कब करते थे, देवियां कब करते थे? असुर के संहार के लिए। और कोई ऐसे बाहर में कोई ऐसे असुर है जो विकराल रूप से दिखने वाले या बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े ऐसे शरीर वाले, तो ऐसे कोई विकराल रूप से कोई ऐसे असुर नहीं है। असुर कहाँ है? असुर कहाँ है इस दुनिया में? कोई है ऐसे असुर? कहाँ है फिर असुर? अपने ही अंदर जो छुपे हुए असुर है, नेगेटिविटी है, विकार है, वेस्ट है, जो है, तो उनको मारने की बात है। इन असुरों को मारने के लिए हमें इन शस्त्रों की जरूरत होगी, है ना। और इन देवियों को शिव शक्तियां कहते थे, कहते हैं, है ना। शिव शक्तियां माना शिव के संतान, शिव की पुत्रियां। हम सभी आत्माएं कौन है? हम सभी आत्माएं, भाई हो या बहन हो, भाई बहन का तो केवल शरीर है, आत्मिक रूप से तो सभी एक जैसे हैं। सभी आत्माएं परमात्मा के, शिव बाबा के संतान है। हम आत्माएं भी शिव के संतान, शिव शक्तियां हैं। और जैसे ही मैंने रिकॉग्नाइज किया वो परमात्मा मेरे पिता है, तो मुझे ये सब शक्तियां वर्षे के रूप में मिल जाता है। हर आत्मा के अंदर हर एक के पास ये अष्ट शक्तियां हैं। लेकिन अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, उसको रिकग्नाइज करके उसके बारे में समझ को बढ़ाने की जरूरत है। शस्त्र तो है लेकिन उसको चलाना कैसे है अगर पता ही नहीं है, तो फिर गलत समय पर गलत तरीके से मैंने अगर उसको यूज किया तो मेरी हार निश्चित हो जाएगा। अगर इस कर्म क्षेत्र में मेरी जीत अगर होनी है तो फिर इन शस्त्रों को कैसे यूज करना है तो उसको हमें समझना होगा, तब जाकर के हम अपने अंदर छिपे हुए असुरों को भस्म कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं और फिर हम सशक्त बन सकते हैं। ये है अष्ट शक्तियां। ये है अष्ट शक्तियां। सबसे पहले एक एक करके हम देखते हैं अष्ट शक्तियों के बारे में। सबसे पहली बात है पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इस चित्र में क्या देख रहे हैं, कछुआ है, और कछुए की विशेषता क्या है, जब चाहे तब अपने कर्मेंद्रियों को अंदर ले सकता है, विड्रॉ कर सकता है, जब चाहे उसको बाहर कर सकता है। क्यों, और जब अंदर लेता है वो बहुत सुरक्षित महसूस करता है। क्यों, क्योंकि ऊपर का जो शेल है उसका बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग है, बहुत हार्ड है, इसीलिए अंदर वो सुरक्षित महसूस करता है। अगर कोई भी पत्थर फेंके उसके ऊपर जाकर के कूदे भी, उसको कुछ नहीं होगा, भले उसका उसके बॉडी बहुत सॉफ्ट है लेकिन ऊपर हार्ड शेल है। ऐसे ही हम सभी के पास ऐसी एक सुरक्षित जगह है, जब भी हमें खतरा लगता है, डर लगता है, भय लगता है, अनसर्टेनिटी लगता है, तो वहां जब जाएंगे तो हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। वो कौन सी जगह है, कौन सी जगह है, परमात्मा के पास। परमात्मा के पास जाने से पहले कुछ और बात की जरूरत होती है, आत्मा यहां हो जाना, मना आत्मिक स्मृति। सबसे बड़ा डर कौन सा होता है, मृत्यु का डर, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो डर लगता है। जब भी ऐसे डर लगने लगता है तो फिर जब मैं अपने आप के जो ये सिंहासन है, ये सीट है, तो वहां सेट हो जाते हैं कि मैं कौन हूं। कौन है आप, केवल आत्मा है, पुण्य आत्मा है, और कौन है, एक दिव्य आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है ना। तो जब अपने स्वमान में स्थित होते हैं तो फिर से अंदर छिपे हुए जो शक्तियां हैं फिर से जागृत हो जाएंगे, फिर हम सामना करने की शक्ति अपने अंदर आ जाता। तो इसीलिए विड्रॉ करना बहुत जरूरी है। जब मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं ना तो लोगों को डर लगता है, क्यों डर लगता है, लेकिन लगता है कि शायद घर बार छोड़ना पड़ेगा, सबसे किनारा करना पड़ेगा, तब जाकर के हम मेडिटेशन कर पाएंगे, तब जाकर के उस राह पर हम चल पाएंगे। यहां हम कहते हैं घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल बीच बीच में अपने कर्मेंद्रियों से अपने मन और बुद्धि को विड्रॉ करके, बाहर की दुनिया से अपने मन और बुद्धि को विड्रॉ करके अपने स्वस्थिति में स्थित कर लीजिए अपने आप को, तो फिर देखेंगे आपके जो रिचार्ज जो होता है तो बहुत जल्दी आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते, सशक्त कर सकते। क्योंकि जो शक्ति कहाँ है, शरीर में तो नहीं है ना, आत्मा के अंदर है। तो आत्मा के साथ जब अपने आप को कनेक्ट करते हैं, खुद के साथ जब कनेक्शन होता है तो फिर वो रिचार्ज हो जाएगा, फिर से वो फिर सुरक्षित हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन बार बार अंदर ले जाना मन और बुद्धि को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जैसे सागर में जब तूफान उठता है ना, तूफान कैसे जाता है, तो वो ऐसे घूम घूम करके स्पाइरल मूवमेंट होता है उसका। अगर कोई जहाज, कोई शिप उसके चपेट में आ गया, उस तूफान के, हुरिकेन या स्टॉर्म जो भी है, तो उसके चपेट में आ गया, उसका डूबना तो निश्चित है। लेकिन कोई बुद्धिमान अगर कैप्टन है, तो कैप्टन को तो सभी पता होता ही है, कैप्टन क्या करता है, बाहर के तरफ ले जाने के बजाय अंदर के तरफ ले जाना शुरू करता है। क्यों क्यों अंदर के तरफ ले जाना शुरू करेगा? क्योंकि पैसेंजर्स जो भी है उनको तो डर लगने लगता है कि अरे बाहर के तरफ ले जाना चाहिए, क्यों अंदर के तरफ ले जा रहे? क्योंकि अंदर जो तूफान का जो स्पीड है ना वो ज्यादा है, बाहर थोड़ा सा कम है। तो बाहर के तरफ ले जाना चाहिए, अंदर के तरफ क्यों ले जा रहे हैं? डर लगने लगता है। लेकिन वहां ले जाना मुश्किल है क्योंकि अंदर थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है, लेकिन बीच में एकदम शांति है जिसको आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं, तूफान की आंख कहते हैं। जब आई ऑफ द स्टॉर्म में चले गए तो एकदम शांति है, चारों तरफ तूफान है लेकिन बीच में शांति है, वहां एकदम सुरक्षित है वो जहाज, है ना। ऐसे ही अपने जीवन में चारों तरफ तूफान है, चारों तरफ तूफान है, है कौन मानता है अपने जीवन में तूफान है चारों तरफ? 100% है। तो जितना आप भागने की कोशिश करेंगे ना बाहर के तरफ, बाहर के तरफ भागना माना शायद यहां जाने से, इनको पूछने से, यहां करने से हमें सोल्यूशन मिलेगा, यहां जाने से ठीक होगा, ये नहीं, भीतर के तरफ अपने आप के तरफ जाएंगे, वहां आपको सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुआ है आपके जिंदगी में किसके कारण से क्रिएट हुआ है? पड़ोसी के कारण से, परिवार वालों के कारण से, इनके कारण, या फिर बॉस के कारण से, कॉलीग के कारण से प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ है आपके जीवन में? खुद की वजह? पक्का पक्का, अड़ोसी पड़ोसी के कारण से नहीं है, परिवार वालों के कारण से नहीं। अभी ये तो मान रहे हैं, अभी यहाँ बाहर जाकर के मुखर नहीं चाहिए फिर आप, नहीं इसके कारण से हुआ, इसके कारण से मैं दुखी हो रही हूँ। पक्का खुद के कारण से प्रॉब्लम्स है जिंदगी में, राइट? इसको पक्का करना। क्यों? कर्मों की गुयगति है ना, कभी ना कभी मैंने किसी को दुख दिया होगा तो इसीलिए दुख अनुभव अभी हो रहा है। तो जो भी रायता फैला हुआ है ना मेरे जीवन में वो खुद के कारण से हुआ है ना। तो इसीलिए उसको ठीक भी साफ भी कौन करेगा? खुद को ही करना पड़ेगा। और सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? बाहर जाने से तो नहीं मिलने वाला है, अंदर जाना होगा। अंदर जाना माना आत्मिक स्थिति में स्थित होना जरूरी है, मन और बुद्धि को एकदम प्लेन करके अपने भीतर के तरफ जब हम जाएंगे, जब एकदम मन और बुद्धि शांत होगा तब आपको सॉल्यूशन मिलना शुरू होगा। तो इसीलिए पावर टू विथड्रॉ, अंदर भीतर के तरफ जाना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये कमजोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। और बीच बीच में ये करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जैसे म्यूजिक में, एक गीत में बीच बीच में जब पॉज होता है ना, साइलेंट होता है, तो वो फिर गीत का जो ये है चाम है या गीत के जो सुर है वो उसका बहुत पकड़ता है और उसका वो और भी ब्यूटीफुल लगने लगता है। बीच बीच के जो साइलेंस है वो बहुत जरूरी है जीवन में। हम इतने बिजी रहते हैं ना जीवन में, सुबह से शाम तक ये करो वो करो, यहां भागो वो करो वो, तो नहीं, बीच बीच में शांति में बैठ करके हमें भीतर के तरफ जाने की जरूरत है। इसीलिए यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, हर घंटे में एक मिनट ट्रैफिक कंट्रोल क्यों बचता है, क्योंकि अपने जो ट्रैफिक है यहाँ विचारों के जो ट्रैफिक है उसको फिर से अलाइन करने के लिए ये ट्रैफिक कंट्रोल बचता है। तो पावर टू विथड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, दूसरी शक्ति है पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। और इस चित्र में क्या देख रहे हैं, एक ट्रैवलर है, एक यात्री है, सूटकेस लेकर के जा रहा है। हम सभी यात्री हैं, एक तो जिंदगी में यात्री है और दूसरी बात आप चंडीगढ़ से यहाँ आए हैं या दूसरी अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से आप यहाँ आए हैं, इस यात्रा ये भी यात्रा करके आप आए हैं। तो अभी जो आए हैं माउंट अबू यहाँ पहुंचे हैं, ज्ञान सरोवर में पहुंचे हैं, तो आपका लगेज कैसा है, कितने हैं लगेज? एक है, दो है, चार है, दस है? दो है बस। क्यों? थोड़ा बहुत ज्यादा लेके आते हैं, बारिश के दिन है, पता नहीं क्या होने वाला है, तो ज्यादा कपड़े लेके आते तो फिर थोड़ा सा कंफर्टेबली रह सकते थे ना। क्यों केवल दो बैग्स लेके आए हैं, एक बड़ा एक छोटा, राइट? मैक्सिमम ऐसे ही होता है। क्यों थोड़ा ज्यादा क्यों नहीं ले? जब सूटकेस आप तैयार कर रहे थे, आप अपना बैग तैयार कर रहे थे, कौन कौन सी चीज डाली आपने उसमें? जो बहुत आवश्यक चीजें थी, जो इन चार दिनों में बहुत आवश्यक, जो आपको जरूरत लगती थी, तो उन्हीं चीजों को आपने उस बैग में डाला। आपको लगा कि इसके बिना मैं चार दिन रह सकती हूँ, इसके बिना मैं रह सकती हूँ, उन सभी चीजों को निकाला, केवल जो आवश्यक चीजें थी केवल उन्हीं चीजों को बैग में डाला, राइट? क्यों एक्स्ट्रा क्यों नहीं लेके आए? कंफर्टेबल नहीं है, राइट? खुद को उठाना पड़ेगा, मेहनत है। फ्लाइट्स में तो फिर वो तो लिमिट होता ही है, लेकिन ट्रेन से और बस से भी जब जाते हैं तो वहां भी लिमिटेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा लेके नहीं आ सकते हैं, है ना? और फिर परेशान रहेगा अगर, स्पेशली जब ट्रेन में आते हैं, अगर दो ही बैग्स है तो बर्थ के नीचे डाल करके निश्चिंत होकर के सो गए, लेकिन 10 बैग्स अगर है तो रात भर नींद आएगी, गिनते रहेंगे। अगर अगर पता चले वो रात जो ट्रेन गुजर रही है तो वो डकैती वाला एरिया है, रात को कोई भी ट्रेन पे चढ़ सकता है और अपना बैग चोरी कर सकता है, अगर मालूम पड़ जाता है तो रात भर नींद खराब। उठ करके जब भी नींद से उठे तो गिनना शुरू करेंगे कि 10 के 10 है कि नहीं है, है ना? जितने ज्यादा लगेज उतनी ज्यादा चिंता, जितने ज्यादा लेस लगेज उतना कम चिंता। उस बैगेज के लिए तो हमने सोचा, अपना अटेंशन रखा, लेकिन जिंदगी के बैगेज, यहां आपका बैगेज कैसा है? एक्स्ट्रा है यहां? टू मच है एक्स्ट्रा, तो आपको ही ढोना है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ही उठा के ले जाना पड़ेगा। जितना ज्यादा यहां लगेज उतना ज्यादा सिर दर्द, उतने ज्यादा भारीपन, है ना? तो इसको यहां से हमें एक्स्ट्रा लगेजेस निकालना होगा। एक्स्ट्रा लगेज कौन सा है? नेगेटिव थॉट्स और फालतू की बातें। नेगेटिव तो एकदम नेगेटिव है ही है, ये जो एक्स्ट्रा जो रखते हैं ना वो समय पे काम आएगा, रहने दो, वो नेगेटिव नहीं होता है। समय पे काम आएगा, रहने दो। वो तो वो भले 6 महीने में मैंने यूज भी नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं रहने दो, वो एक्स्ट्रा ये होता है। जब हम खाना खाते हैं तो जब न्यूट्रिशियस भोजन खाते हैं तो वो थोड़ा ही खाते, लेकिन फिर जब अटपटा चटपटा खाना खाते हैं ज्यादा कैलोरीज बढ़ता है ना? अटपटी चटपटी चीजें बहुत टेस्टी होता है, लेकिन फिर वेट बढ़ाने वाली बातें होती है, है ना? तो ऐसे ही ये जो अटपटी चटपटी बातें होती है ना, मन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर आत्मा के शहद के लिए वो बहुत खराब है। वो कौन सी बातें हैं? अटपटी चटपटी बातें, चुगली। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या? अनावश्यक बातें, वेस्ट। वेस्ट बातें हमारा एक्स्ट्रा लगेज है। वेस्ट कौन सी है? अनावश्यक पास्ट के बारे में सोचना, जो बीत गई बात, उसके कुछ आप कर सकते हो? उसको कुछ भी परिवर्तन आप कर नहीं सकते। जब परिवर्तन कर ही नहीं सकते तो उसके बारे में सोच सोच करके फायदा क्या है? अरे उसने ऐसा कह दिया, ऐसे रे इसने, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखा मैंने इतना कुछ मदद किया फिर भी उसने ऐसा किया, ये किया वो किया। सारे पास्ट की बातें सोच सोच करके हम यहाँ भारी हो रहे हैं, उसको हम परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर करना क्या है? अभी उसको फुल स्टॉप लगाना होगा, उसको निकालना होगा। फुल स्टॉप लगाने के लिए इतना सहज है, अगर कोई व्हाइट बोर्ड यहाँ होता तो फिर अरे डस्टर लेकर के यहाँ ऐसे मिटा देते तो मिट जाता। मेमोरी को मिटाना इतना इजी है, कंप्यूटर की मेमोरी को भी डिलीट करना इजी है, एक डिलीट बटन दबा दिया वो डिलीट हो गया, साफ करना इजी है। लेकिन इस कंप्यूटर को फॉर्मेट करना या डिलीट करना इजी है। पास्ट की बातें, चलिए मैं ये एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, आप जिंदगी में, आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी ज्यादा है या नेगेटिविटी ज्यादा है? पॉजिटिविटी ज्यादा है मानते हैं, तो आपके मेमोरीज में, यादों में, पास्ट के बारे में पॉजिटिव मेमोरीज ज्यादा है या नेगेटिव मेमोरीज ज्यादा है? पॉजिटिव मेमोरीज ज्यादा है, पक्का है? पक्का है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक नौकरी पे जा रहे हैं और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, बस ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और उनको एक घंटे का सफर है उनका घर से लेकर के उनके जो ऑफिस तक, एक घंटा। तो वो हर रोज 9 बजे के बस ले रहे हैं, तो वो हर रोज जो लेने वाले हैं कुछ लोग होते हैं, तो फिर उनके साथ फ्रेंडशिप हो जाता है, गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं, जो भी है सब करते हैं, एंजॉय करके जा रहे हैं, राइट। लेकिन एक दिन, 30 दिन तो बहुत अच्छे चले, गॉसिप किया, मजाक किया, हंसी मजाक किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, सब कुछ हुआ। लेकिन 31st डे लड़ाई नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बहस हो गया, डिस्कशन कुछ हो रहा था तो बहस हो गया, अच्छा फाइटिंग नहीं, लड़ाई ही नहीं लेकिन बहस हो गया, ठीक है वो बात हो गई, फिर से सफर करना शुरू किया है किया। 3 महीने के बाद वो 30 डेज याद रहेगा या वो एक दिन याद रहेगा? एक दिन याद रहेगा। 30 दिन तो एंजॉय किया, अगर दोनों तराजू पर डालेंगे, 30 दिन के सुख और एक दिन की थोड़ा बहुत परेशानी, कौन सा वर्थ रिमेम्बरिंग है? 30 डेज, क्योंकि 30 डेज बहुत खूबसूरत थे, 30 दिन बहुत अच्छा हमने बिताया, बहुत बहुत अच्छी मेमोरीज थे, लेकिन उसके बेंट में, उसके कंपैरिजन में उसको हम भूल ही गए, और एक चीज को, छोटी सी बात थी वो, उसको पकड़ करके बैठे हुए हैं। हम भी ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे करते हैं, राइट। तो आज क्या करना है, आज क्या करना है, छोटी छोटी बातों को लेट गो करना है, और जो 30 डेज जो मैक्सिमम मुझे जो मिला है जिंदगी में, ब्लेसिंग्स अगर हम गिनना शुरू करें, जीवन में क्या क्या ब्लेसिंग्स मिला है, लंबा चौड़ा ब्लेसिंग्स है ना। परेशानी बहुत थोड़ा है, 0.1% या 1% होगा, उस 1% को पकड़ करके बैठे हुए होते हैं, 99% जो सुख मिला है उसको हम डोंट केयर कर, वो तो होना ही है ना, वो तो मिलना ही था ना। अगर पेरेंट्स अच्छी परवरिश कर रहे हैं बच्चों की, बच्चे क्या सोच, उनका तो फर्ज है ना, उनको करना ही है ना, तो ये हम शुक्रगुजार नहीं है अपने पेरेंट्स के प्रति, लेकिन वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, नहीं तो पैदा क्यों किया, नेगेटिव है ना। तो जो छोटी छोटी बातें मुझे मिली आगे उनको जाकर के पूछे, पेरेंट्स का सुख क्या होता है जो ऑफन्स है, जो अनाथ है ना। तो छोटी छोटी बातें जिंदगी में मिली है वो आशीर्वाद है, छोटी छोटी बातें हैं है ना। मेरे पैर ठीक चल रहे हैं, मेरा शरीर ठीक है, मैं अच्छा देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, बोल सकती हूँ है ना। ये भी शरीर भी ठीक रख रहे ना, ये भी तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है ना। अगर गिनना शुरू करेंगे ना, बहुत लंबा छोड़ा लिस्ट है। तो इसीलिए इसके सामने वो छोटी छोटी बातों को पकड़ करके नहीं बैठना, यू हैव टू लेट गो ऑफ दोस थिंग्स। अब लेट गो कैसे करेंगे, लेट गो कैसे करेंगे, लेट गो करने के लिए हमें फॉरगिव करना होगा, क्षमा करना होगा। जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे अब भूल नहीं पाएंगे। ये दो शब्द एक साथ चलते हैं, फॉरगिव, ओनली देन यू कैन फॉरगेट। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे आप उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाएंगे। भले अगर जिंदगी में बहुत बड़ी नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव घटना घटी होगी, या किसका मर्डर हुआ होगा, किसी ऐसे कुछ बहुत ये, उसको माफ करना बहुत मुश्किल होता है जिंदगी में। भले उस इंसिडेंट को हम भूल नहीं पाएंगे, लेकिन अंदर जो नफरत घृणा जो उस व्यक्ति के प्रति है वो कम होना शुरू हो जाता है ना। कोशिश तो करके देखे, उस इंसिडेंट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मेरा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है मन का, जो नेगेटिव गुस्सा है, हेट्रेड है, नफरत है, वो तो मैं कम कर सकती हूँ। क्योंकि क्षमा करके दूसरों पर हम मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, खुद पर मुझे मेहरबानी करना होगा। दूसरों को क्षमा करके खुद पर मैं मेहरबानी कर रही हूँ, कैसे, अपना एक्स्ट्रा बोझ निकाल रही हूँ और मैं यहाँ लाइट होती जा रही हूँ, हल्का होती जा रही हूँ, लाइट होती जा रही हूँ, या खुद पर मेहरबानी कर रही हूँ है ना। फॉरगिव, ओनली देन यू कैन फॉरगेट, वहां फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। जब हम चलते हैं ना, जब चल रहे होते तो एक टांग अगर कहीं बंधा हुआ है, फंसा हुआ है कीचड़ में, तो कितना भी आप एनर्जी लगाएं आगे जाने की, नहीं जा सकते। इस पैर को फ्री करना होगा। ऐसे ही अगर मेरी बुद्धि बार बार पास्ट में जा रहा है, तो वहां से मैं अपनी बुद्धि को निकाल नहीं पा रही हूं, कितना भी मैं कोशिश करूं, मुझे मूव ऑन करना है, मूव ऑन करना है, मूव ऑन नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि बुद्धि बार बार वहां बंधा हुआ है। यहां मुझे काटना पड़ेगा, उसको फ्री करना होगा, तब जाकर के हम मूव ऑन कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा है, उसको निकालना होगा। और सेकंड टाइप ऑफ एक्स्ट्रा लगेज वो है जो अनावश्यक भविष्य की चिंता करते, कल क्या होगा इसकी चिंता है नहीं है नहीं है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, उनको नौकरी मिलेगी, वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, उनके जिंदगी क्या होगा, कैसे होगा, अभी रिटायरमेंट के लिए 2 साल बाकी है, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, चिंता है, चिंता है। वर्तमान में बार बार ये आदत करनी पड़ेगी, और ये भी देखना होगा किस रीति का वो ये व्यवहार है। कहीं ना कहीं हमें स्टर्न भी बनना पड़ेगा, थोड़ा सा फर्म भी बनना पड़ेगा, वो फिर आगे, वो भी एक शक्ति है। मैं आगे जाकर के वो बता, उसके बारे में बताऊंगी। तो अभी बात हो रही थी भविष्य की, भविष्य की चिंता है, है? तो भविष्य के बारे में चिंता करने से कुछ लाभ होगा नहीं होगा? लाभ होगा तो अपने ही एनर्जी वेस्ट हो रहा है। चिंता किसको कहा जाता है? रिपीटेड थॉट्स ऑफ द सेम इंसिडेंट, कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, रिपीटेड, जब हम रिपीट करते हैं उस बात को, उसको चिंता कहा जाता है। मान लीजिए 6 महीने के बाद रिटायरमेंट हो रहा है मेरा, मैंने पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स मैंने कर लिया कि ठीक है कितना इतना पैसा आएगा, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, टाइम कहाँ यूटिलाइज करना है, सारा कुछ मैंने प्लान कर लिया। लेकिन हर रोज सुबह उठ करके मैं कैलेंडर देख रही हूँ, इतने दिन बाकी है रिटायरमेंट होने में, वो करने क्या होगा, क्या करूंगी, कैसे करूंगी, ये करूंगी वो कर, रिपीटेड एक ही प्रकार के विचार मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, उसको चिंता कहा जाता है। चिंता करने से अपनी ही मन की जो एनर्जी है वो घटता जाएगा। प्लान जरूर करना है भविष्य के बारे में, लेकिन उसको लेकर के चिंतित नहीं होना है। चिंता क्यों आता है, चिंता क्यों है, क्योंकि डर है। और डर क्यों है, डर क्यों है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, भविष्य में क्या होगा किसी को भी पता नहीं है। कितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स है, रफली वो बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं बता सकते। तो अनसर्टेनिटी होने के कारण से डर है, और डर के कारण से चिंता है। अभी वो चिंता निकालने के लिए अनसर्टेनिटी तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि अनसर्टन तो रहेगा ही हमेशा भविष्य। लेकिन किस पर हमें काम करना है, भय के ऊपर। भय के ऊपर अगर काम करेंगे, उसको निकालेंगे, तो फिर हम निश्चिंत रह सकते हैं। और भय क्यों हो रहा है, अभी भय पॉजिटिविटी के कारण से हो रहा है, नेगेटिविटी के कारण से हो रहा है, नेगेटिविटी के कारण से, कहीं ऐसा ना हो जाए। जब कोरोना काल आया था तो भय था कि मुझे भी कोरोना ना हो जाए, अपने परिवार वालों को भी कोरोना ना हो जाए। तो ये सोच सोच कर, ये जो सोच रहे हैं मुझे ऐसा ना हो जाए, ये पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोचना है, ये नेगेटिव है, सोच नेगेटिव है। पॉजिटिव सोचना क्या किसको कहते हैं, जो होगा देखा जाएगा, मास्क भले नहीं पहनो, वैक्सीन नहीं लेना नहीं हो तो नहीं हो, चलो जो होगा देखा जाएगा, ऐसे लाइफ में प्रिकॉशन तो रखना होगा, ट्रैफिक सिग्नल्स तो फॉलो करना पड़ेगा, लाइफ के जो रूल्स है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। फिर क्या करना होगा भय को निकालने के लिए, फिर भी होगा जो अच्छा होगा, कैसे अच्छा होगा, किस आधार से अच्छा होगा, ठोस कुछ ये चाहिए ना, किस आधार से अच्छा होगा, क्यों अच्छा होगा। प्लानिंग तो कर लिया, प्लानिंग कर लेने के बाद जो नेगेटिव सोच आ रहा है ना कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो अभी पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं ये सोचू कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, बीमार ना पड़ जाऊं, तो इतने लोग बीमार पड़ रहे, कहीं मैं भी बीमार ना पड़ जाऊं, तो ये सोचना नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव क्या है, वो तो है, लेकिन सोचना क्या है, आई एम हेल्दी, है ना, ये सोचना जरूरी है। क्योंकि क्या है, जो हम सोचते हैं उसको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब मैं ये सोच रही हूं कि मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मुझे कैंसर ना हो जाए, तो कैंसर को मैं एनर्जी दे रही हूं, क्योंकि मन जो सोचता है पिक्चर्स में सोचता है। अगर ये जो ना, नो, नहीं, ये जो शब्द है ना, जो भी जिस सेंटेंस में भी ये शब्द आता है वो नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। अगर मैं ये सोचू मैं बीमार ना पड़ जाऊं, इसमें नेगेटिव वर्ड आ गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो फिर मैं बीमारी को मैं एनर्जी दे रही हूं। जैसे अगर आपको कहे अगले 30 सेकेंड्स में, एक मिनट में नहीं, अगले 30 सेकेंड्स में आपको बंदर को याद नहीं करना है। अभी तक तो याद नहीं किया होगा चार दिन में। जैसे ही मैंने बोला बंदर को याद नहीं करना, वही चित्र जैसे आप ऊपर आ रहे थे या फिर विष्णुपुरी के पास आप देखे होंगे या कुछ ऐसा होगा, तो वो चित्र याद सामने आ जाता है ना। तो मैंने क्या बोला था आपको, याद नहीं करना है, लेकिन बंदर बोलते ही फिर वो चित्र सामने आ गया। फिर मैं बोलूं नहीं, फिर ये भगाना वो तो नहीं होगा, है ना। तो हमेशा बीमारी सोचते ही बीमारी को मैंने एनर्जी दे दी। बीमारी नहीं आना चाहिए, आ तो गया एक बार फिर भगाओ, उसको आने ही नहीं देना है। तो उसके साथ क्या सोचना है, मैं हेल्दी हूं, हेल्दी रहूंगी, है ना। भविष्य के बारे में किसी भी क्षेत्र में, चाहे फाइनेंस का, हेल्थ का, रिलेशनशिप, जो भी है, अच्छा है, अच्छा रहेगा। जो बीता वो बहुत अच्छा, जो हो रहा है वो भी बहुत बहुत अच्छा, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा अच्छा बोलते हैं, अगर अच्छा भी नहीं है तो अच्छा हो ही जाएगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलना है भविष्य को लेकर के, है ना। तो एनर्जी पॉजिटिव, पॉजिटिविटी की एनर्जी देंगे। और दूसरी बात, डर। डर को कैसे निकालेंगे, डर को किस आधार से निकालेंगे? एक है मेरे अंदर वो शक्ति होना चाहिए जिस आधार से मुझे डर नहीं लगेगा, राइट। और फिर दूसरी बात है, मेरे जो कोई होंगे, जैसे नहीं कोई पॉलिटिशियन के जो बेटे या नहीं कहते, तुमको पता नहीं मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है। तो आपका बाप कौन है, आपके बाप कौन है? सर्वशक्तिमान, है ना। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान के संतान हूं, मेरे भले मैं कमजोर हूं लेकिन मेरे पिता सर्व, इस संसार में पूरे यूनिवर्स में वो शक्तिवान है, है ना। वो जब बिलीफ है, विश्वास है, तो फिर किसी भी समस्या का सामना मैं कर सकती हूँ। इस आधार से मेरा डर निकलेगा। ऐसा नहीं कि हाँ डर निकालना, इस कोई ना कोई आधार चाहिए। मैं आत्मा, मुझ आत्मा का भी ओरिजिनल क्वालिटी शक्ति है। सात क्वालिटीज आपने सुना आत्मा के, तो आत्मा ओरिजिनली शक्तिशाली है। देह भान में आकर के मैं आत्मा कमजोरी हुई, बस मैं आत्मा ओरिजिनली शक्तिशाली हूं। और दूसरी बात, मेरा पिता वो शक्तिशाली है, इसीलिए इस आधार से मैं अपने डर को निकाल सकती हूं और भविष्य के जो एक्स्ट्रा लगेज है वो मैं लाइट कर सकती हूँ। जो एक्स्ट्रा लगेजेस पास्ट के और फ्यूचर के एक्स्ट्रा लगेजेस निकालेंगे, केवल वर्तमान में मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है, उस पर फोकस करेंगे तो भविष्य उज्जवल होगा ही, है ना। तो ये एक्स्ट्रा लगेजेस निकालने की जरूरत है। दिस इज पावर टू पैक अप, समेटने की शक्ति। और तीसरी शक्ति है पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। सहन करना एक शक्ति है या कमजोरी है? थोड़ा पंखा थोड़ा फास्ट करेंगे भैया। सहन करना एक शक्ति है या कमजोरी है? शक्ति है या कमजोरी है? कब तक, कब तक मैं सहन करूं, कब तक मैं घुटती रहूं, कब तक, ये आएगा ना। तो ये शक्ति है कमजोरी है? शक्ति है। जब दूसरा व्यक्ति सहन करता है ना, फिर उसे गुणगान करते हैं, अरे बाप रे वो तो एक हीरा है, बहुत चुप रहती है, वो तो इतनी सहन करती है, इतना अच्छा है, इतनी अच्छी है, वो देवी है, ये है वो। लेकिन खुद की बारी आई तो मैं क्यों सहन करूं, मैं अगर कहूंगा और ही मुझे दबाया जाएगा, मैं अगर एक बार सहन करूं, मैं एक बार चुप रहूं तो और भी दबाया जाएगा, मुझे सहन नहीं करना है, मुझे बोलना है। एक दूसरा सहन करे तो वो बोल ही रहा है, खुद नहीं करना है। ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हो गया ना। तो सहन करना कमजोरी है या शक्ति है? खुद के लिए नहीं मान रहे हैं, ये कमजोरी मान रहे हैं, दूसरों के लिए कह रहे हैं कि ये शक्ति है, है ना। एक्चुअली सहन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी और शक्तिशाली आत्माएं ही सहन कर सकती हैं, कमजोर आत्माएं सहन नहीं कर पाएगी। जैसे गाड़ी के जो ये है ना सस्पेंशन होता है, जितना ज्यादा पावरफुल होता है उतना ज्यादा वो गाड़ी स्मूथ चलती है रोड पर, कितने भी खड्डे हो, लेकिन उसका सस्पेंशन अगर पावरफुल है तो गाड़ी स्मूथ चलेगी। और अपने जीवन में रफ रोड्स ही ज्यादा है, खड्डे ही ज्यादा है, चैलेंजेस ही ज्यादा है, अगर हर चैलेंज में मैं उछलना शुरू करूं, मेरे जीवन रूपी गाड़ी क्या होगा? स्मूथ नहीं चल सकती है। इसीलिए अपने सहन शक्ति को बढ़ाना होगा ताकि फिर जीवन रूपी जो गाड़ी है वो बहुत स्मूथली चले। लेकिन सहन करना मुश्किल क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं इसके बारे में समझ गलत है। सहनशीलता, ये दो शब्द है, सहनशीलता दो है शब्द है। सहन करना माना ऊपर से चुप, कुछ रिएक्ट नहीं करना। शीलता माना अंदर भी शीतल, कूल। हम सभी ने सहन किया है, हम सभी सहन करते ही है, सेलेक्टिवली सहन करते हैं। इसका सहन करते हैं, इसका हम सहन नहीं करते हैं। बच्ची का सहन करते हैं, बहू का सहन नहीं करते। बच्ची का बेटी का सहन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपनी है। बहू का क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अपनी नहीं। जहां अपनापन है वहां सहनशीलता बहुत नेचुरल हो जाता है। जहां पराया हम समझते हैं ना, ये पराये हैं, तो सहन करना मुश्किल लगता है। बच्चा अभी छोटा है, रात भर अगर बीमार है, माँ जाग करके भी उसकी देखभाल करेगी, नींद को त्याग करके भी, अपना खाना पीना भी त्याग करके उसके बच्चे की देखभाल करेगी। लेकिन अगर कोई दूसरे अपने रिलेटिव के बच्चे को आपके घर में अगर छोड़ा है, अगर वो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, आप क्या बोलेंगे? क्या मुसीबत है, मुझे नहीं पालना है, उसको लेके जाओ। अपने बच्चे के लिए आपने नहीं कहा क्या मुसीबत है, अपने बच्चे के लिए कभी नहीं कहेंगे क्या मुसीबत है। क्यों? क्या अपना है ना। कितना भी क्यों ना प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी सहन करके, त्याग करके उसकी देखभाल हम करेंगे, परायों के लिए हम नहीं करेंगे। जहां अपनापन है, जहां प्यार है, सहन करना एक नेचुरल हो जाता है ना। तो इसलिए सहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सहन के जो परसेंटेज है, सहनशीलता के परसेंटेज बढ़ाने कैसे बढ़ा सकते हैं? हम कैसे बढ़ा सकते हैं? प्यार, हर व्यक्ति के प्रति स्नेह की भावना, अपनेपन की भावना हम जागृत करें, तो फिर हम उनको हम सहन कर, जब सहन करेंगे तभी हम मूर्ति बन सकते हैं। एक पत्थर मूर्ति बनने के लिए बहुत हथौड़े सहन करने पड़ते हैं। अगर पत्थर रोने लगे, अरे मुझे दर्द हो रहा है, नहीं तोड़ो यहाँ, नहीं मारो यहाँ, वो मूर्ति नहीं बन सकती है ना। जब जीवन के हथौड़े लगते हैं ना, तो क्या सोचना है? मैं मूर्ति बन रही हूँ, मैं महान बन रही हूँ, मैं मूर्ति बन रही हूँ। पत्थर ही रहना है या मूर्ति भी बनना है आपको? पत्थर ही ठीक हूँ, मुझे सहन नहीं करना है, मुझे दर्द होगा, मुझे सहन नहीं करना है, तो पत्थर ही ठीक हूँ, ऐसे कहेंगे? ऐसे कहेंगे मूर्ति बनना है? अच्छा बनना है, महान बनना, महान भले लोगों के लिए नहीं, एटलीस्ट खुद के लिए। जितना जितना हम सहन करने लगते हैं, वहां दर्द कम होना होने लगता है, क्योंकि प्यार है वहां, वहां परायापन नहीं है। प्यार होने के कारण से दर्द भी दर्द नहीं लगता है, वहां सुख है उसमें, है ना। तो सहन करने की शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। और चौथी शक्ति है पावर टू एडजस्ट या समाने की शक्ति। सागर में बहुत सारे नदियों के पानी के साथ साथ बहुत सारा किचड़ा भी आता है ना, ड्रेनेज का भी पानी आ जाता है, किचड़ा भी आ जाता है, लेकिन सागर क्या करता है, सारे किचड़े को वो बाहर फेंक देता है और केवल शुद्ध पानी को वो लेता है। अगर कोई सुसाइड भी करता है ना जाकर के, एक दो दिन के बाद वो डेड बॉडी बाहर आ जाता है, अंदर नहीं जाता है, बाहर फेंक देता है सागर। किचड़े को बाहर फेंक दिया, केवल शुद्धता को वो अंदर लिया। तो इसीलिए सागर के तले में हीरे मोती मिलते हैं, और अंदर जाएंगे तो पानी शुद्ध होता है वहां, केवल किनारों पर शादी पानी थोड़ा सा गंदा होता है, क्योंकि वो सारा बाहर फेंक रहा होता है। ऐसे ही अगर मेरे अंदर एडजस्टिंग पावर को बढ़ाना है तो क्या करना होगा, सागर समान अपने दिल को बहुत बड़ा करना होगा। बहुत लोगों के साथ अपना संबंध संपर्क होगा तो क्या करना होगा, हर एक के अंदर नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी भी है तो नेगेटिविटी भी है, गुण भी है तो अवगुण भी है। इस संसार में कोई भी परफेक्ट व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई है जो कहे कि मैं 100% गुणवान हूं, मेरे अंदर 0.1% भी अवगुण नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है कोई नहीं है। खुद भी हम अपने लिए नहीं कह सकते मैं 100% गुणवान हूं, मेरे अंदर 1% भी अवगुण नहीं है, खुद के लिए भी हम नहीं कह सकते। जब मैं खुद के लिए नहीं कह सकती हूं, मैं एक्सपेक्ट क्यों करूं दूसरों के बारे में, एक गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसको ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसको मैं एक्सपेक्ट कैसे करूं, खुद में इतने सारे कमी कमजोरियां हैं, मैं दूसरों के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूं। तो इसीलिए अवगुणों को छोड़ करके केवल गुण को चुगना शुरू करें। जब हम नए नए मिलते हैं ना, तो फिर केवल गुणों को देखते हैं, एक इतने अच्छे हैं, ये बहुत मीठा बोलती है, ये अच्छा है, ये है। लेकिन जैसे जैसे हम उस व्यक्ति के साथ रहना शुरू करते हैं तो क्या होगा, नए नए शादी जब होता है, इन लॉज का हाउस बहुत अच्छा लगता है, पति बहुत देवता लगते हैं, पत्नी देवी लगती है, नए नए बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि केवल गुण हम देख रहे हैं। लेकिन रहते रहते एक मास हो गया, 6 मास हो गए, 1 साल हो गए, धीरे धीरे क्या दिखाई देने लगता है, अवगुण, थोड़ा थोड़ा वीकनेसेस, अवगुण, ये वो। तो फिर वो जो सुख था, वो जो खुशी थी, वो जो आनंद था, वो धीरे 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 कम होना शुरू हो गया। फिर बाद में क्या हो गया, जो पॉजिटिविटी जो दिखाई दे रहा था वो तो गायब भी हो गया, केवल अवगुण दिखाई देने लगता है ना। तो चलिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। सबके पास नोटबुक पेन है, ठीक है, सभी मैरिड है, राइट। अभी आप अपने नोटबुक पेन लीजिए और अपने स्पाउस के, अगर वाइफ है तो हस्बैंड और हस्बैंड है तो वाइफ के, आपके स्पाउस के 10 अवगुण लिखिए। 10 अवगुण लिखिए। अगर कोई मैरिड नहीं है तो आपके सिब्लिंग्स, भाई बहन तो होंगे, वो तो अच्छे टारगेट है भाई बहन हो तो होंगे। हाँ ठीक है, 10 अवगुण लिखिए। कोई भी वीकनेस, कोई भी ऐसे चलो 10 नहीं हो तो 5 तो लिख लीजिए। अरे 10 हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 5 हो तो वो भी ठीक है, 5 लिख लीजिए। घर भी जाना है तो उनको नहीं दिखाना है ना, खुद के लिए है वो, उनको नहीं दिखाइए, आप अपने पास रखिए उसको। ठीक है, लिख लिया, हो गया। क्योंकि घर जाना है ना इसीलिए। एक मिनट, 3-4 दिन में भूल गए। अच्छा लिख लिया, ओके। अभी नेक्स्ट पेज पे 10 गुण लिखिए। पॉजिटिविटी, कुछ भी अच्छी बात, 10 गुण लिखिए। 10 नहीं दिखाई देते तो 5 लिख लीजिए, 5 नहीं दिख रहा है तो 1 तो लिख लीजिए। एटलीस्ट 1 तो होगा, अनगिनत है तो अनगिनत लिस्ट लिखिए फिर। लिख लिया, हो गया। चल लिख रहे हैं अभी भी, जिनका हो गया थोड़ा सा हाथ कर लेंगे। ओके, कौन सा सहज था, अवगुण लिखना इजी था या गुण लिखना इजी था? जो कहते हैं अवगुण लिखना इजी था वो हाथ उठाए। नहीं, एक दूसरे को नहीं देखिए, क्या सोचेंगे मेरे स्पाउस ने क्या सोचेंगे, वो नहीं, अपने लिए भी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होकर के बताएं, अवगुण लिखना किसके लिए सहज था, हाथ उठाएंगे। ओके, गुण लिखना किसके लिए सहज था? और जिन्होंने दोनों में नहीं हाथ उठाए उनके लिए, उनको क्या था? वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है अभी तक। क्या है क्या नहीं है वो सोचते ही रह गए हैं शायद, है ना? दोनों में सहजता थी। ओके, बहुत बड़ी बात, बैलेंस था, बैलेंस था, राइट। तो इससे पता चलता है कि मैं, मेरे नजर केवल नेगेटिविटी में जाता है या पॉजिटिविटी में जाता है। अगर नेगेटिविटी लिखना इजी था तो मेरे नजर केवल नेगेटिविटी में जा रहे, क्योंकि रोज उसके बारे में सोच रहे हैं। और पॉजिटिव बातें लिखना इजी था, इसका मतलब है पॉजिटिविटी के बारे में मैं ज्यादा सोचती हूँ। और दोनों लिखना इजी था, इसका मतलब है दोनों के बारे में आप सोच रहे हैं। तो अभी क्या करना है, नेगेटिविटी को इतना भाव नहीं देना है, पॉजिटिविटी को ज्यादा भाव देना है। जितना आप पॉजिटिविटी को ज्यादा एनर्जी देते जाएंगे उतना फिर वो बढ़ता जाएगा, नेगेटिविटी कम होता जाएगा। और फिर देखेंगे आपके अंदर वो एडजस्टिंग पावर है तो फिर बढ़ता जाएगा। एडजस्टिंग पावर क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्योंकि ये सोचती हूँ इसके साथ मैं एडजस्ट नहीं हो सकती, इसके साथ मैं रूम शेयर नहीं कर सकती, इसके साथ मैं काम नहीं कर सकती, इसके साथ मैं जी नहीं सकती हूँ, क्यों ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है? कहीं ना कहीं केवल हम अवगुणों को देख रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात ये है, सेल्फिश होते जा रहे हैं, मुझे चाहिए सब कुछ, मैं कंफर्ट, मुझे कंफर्टेबल रहना है। सेल्फिशनेस ज्यादा होने के कारण से और केवल नेगेटिविटी देखने के कारण से एडजस्टिंग पावर, समाने की शक्ति तो हम होता हुआ नजर आ रहे हैं। अगर समाने की शक्ति एडजस्टिंग पावर कम होगा तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? मैं किसी के साथ भी एडजस्ट होकर के नहीं चल सकती हूँ, किसी के साथ रूम शेयर नहीं कर सकती हूँ, किसी के साथ मैं काम नहीं कर सकती हूँ। एज अ सिंगल पर्सन आई एम वेरी गुड, मशीन्स के साथ मैं अच्छा काम कर सकती हूँ, लेकिन टीम वर्क करना मेरे लिए मुश्किल है। ऐसा अगर होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, लोनलीनेस बढ़ता जाएगा। लोनलीनेस जब बढ़ेगा डिप्रेशन बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा फिर सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ेंगे। ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए एडजस्टिंग पावर बढ़ाना होगा, लोगों के साथ टीम वर्क करना सीखना होगा, दूसरों को समा करके चलना सीखना होगा। और समा करके चलने के लिए क्या करना होगा, सागर समान केवल पॉजिटिविटी को ले और नेगेटिविटी को बुद्धि से भगा दे, है ना। किसी को हम शिक्षा दे सकते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान दिला सकते हैं, दिलाएं, लेकिन वो परिवर्तन नहीं करेंगे तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट शक्ति है छोड़ना नहीं है, इग्नोर करना है बस। उस व्यक्ति को तो नहीं छोड़ सकते छोड़ना वाला व्यक्ति को नहीं छोड़ना है, इग्नोर करना है बस, ठीक है। देखा अनदेखा करना है, इग्नोर करना शुरू कर। एक दो बार ध्यान दिलाया, इसके कारण से मुझे दुख मिला है या कुछ भी है तो ध्यान दिलाए तो, लेकिन वो परिवर्तन नहीं हो रहा है तो जस्ट इग्नोर और केवल पॉजिटिव एनर्जी देने बस। और नेक्स्ट शक्ति है पावर टू डिसर्न। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएंगे भैया, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाए। परखने की शक्ति, इस चित्र में क्या देख रहे हैं, एक जौहरी, एक ज्वेलर डायमंड को परख रहा है लेंस के द्वारा। लेंस के द्वारा देखने से डायमंड पता चलता है कि कितना दाग है, कितना शुद्ध है, वो पता चलता है। ये जो भी चार शक्ति अभी तक देखा हमने, पावर टू विड्रॉ, पावर टू पैकअप, पावर टू टॉलरेट और पावर टू एडजस्ट, ये सॉफ्ट पावर्स है ना। पावर टू एडजस्ट तो करना होगा, सहन तो करना होगा, लेकिन कई बार धोखे मिलते हैं रिलेशनशिप में, संबंध में धोखे मिलते हैं। जब धोखा मिलता है तो फिर, अगर पहले बार मुझे धोखा मिला वो मेरी गलती नहीं थी क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया, दूसरे समय दूसरे बार उसी व्यक्ति से धोखा मिला तो क्या, किसकी गलती माना जाएगा, खुद की गलती है। और तीसरे बार उसी व्यक्ति से मुझे धोखा मिला तो मैं तो बेवकूफ हूं, मैं तो बुद्धू हूं, क्योंकि बार बार धोखे मिलने से मैंने अपना लेसन नहीं सीखा, मैंने अपने सीख नहीं सीखी, फिर से जाकर के मैं उस पर विश्वास कर रही हूं। जैसे हिस्ट्री में हमने देखा, इतिहास गवाह है, तो पृथ्वीराज चौहान जी बार बार वो माफ करते थे, बार बार ये, लेकिन फिर वो पावरफुल होकर के फिर वो आकर के अटैक करते थे, है ना। एक बार के धोखे से हमें समझ जाना चाहिए व्यक्ति कैसा है, है ना। परखने की भी शक्ति चाहिए होगा जिंदगी में, है ना। तो परखने के लिए कैसे हम परखे, उसके लिए वो लेंस चाहिए। हीरे को परखने के लिए लेंस की जरूरत है। हम दो चीजों को परखते हैं, व्यक्ति को परखते हैं और परिस्थिति को परखते हैं। चीजों को तो परखते ही है, वो तो है ही, लेकिन लाइफ में व्यक्ति को परखते हैं और परिस्थिति को परखते हैं। इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और व्यक्ति को भी किस हद तक मैं इसके साथ संबंध जोड़ सकती हूँ, बिजनेस पार्टनर बना सकती हूँ, लाइफ पार्टनर बना सकती हूँ, तो ये उस हद तक वो फिर उस व्यक्ति को परख करके फिर हम संबंध जोड़ते हैं, है ना। तो उस परखने के लिए हमारे लिए लेंस क्या है, लेंस है अपनी बुद्धि। जितना बुद्धि की शक्ति, बुद्धि के अंदर क्लैरिटी होगा उतना हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मन को क्लीन और बुद्धि को क्लियर करते हैं। जो भी हमारे बुद्धि के अंदर जो कंफ्यूजन है, क्लॉग्स है, ये जो भी झमेला है, तो वो क्लियर होना शुरू होता है मेडिटेशन के द्वारा। तो इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, इन्फॉर्मेशन के आधार से हम उस व्यक्ति को परखते हैं। केवल इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन विजडम में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। ये तीन लेवल्स है, एक है इन्फॉर्मेशन, दूसरा लेवल है ज्ञान नॉलेज, और तीसरा लेवल है विजडम या प्रज्ञा। इन्फॉर्मेशन क्या है? बेसिक है, जो लोगों से, सोशल मीडिया से, बाहर से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है ना? वो इन्फॉर्मेशन फिर ज्ञान में कैसे परिवर्तन करेंगे? इन्फॉर्मेशन और ज्ञान में अंतर है, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर है। क्या अंतर है? जैसे अगर आपको इन्फॉर्मेशन किसी ने दिया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, इट्स अ वन लाइन इन्फॉर्मेशन, यू शुड नॉट गेट एंग्री, केवल इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन के रूप में रह रहे, तो क्या होगा? इन्फॉर्मेशन ज्ञान में परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा? जब इन्फॉर्मेशन है, केवल एक लाइन का इन्फॉर्मेशन है, क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से हानि क्या होगा, क्रोध न करने से लाभ क्या होगा, समझ उसमें नहीं है। इन्फॉर्मेशन किसी ने, बड़े बुजुर्गों ने कहा क्रोध नहीं करना चाहिए, ब्लाइंडली मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इन्फॉर्मेशन में वो ताकत नहीं है। जब तक वो व्यक्ति है मैं गुस्सा नहीं करूंगी, वो व्यक्ति चले जाते ही फिर मैं गुस्सा करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो ताकत नहीं बना है। लेकिन मैं जिस समझ जाऊंगी क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, वो ज्ञान में परिवर्तन हो गया। इन्फॉर्मेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू नॉलेज। उस इन्फॉर्मेशन को अच्छी रीति समझना, क्यों नहीं करना चाहिए, करने से क्या होगा, ये सारा समझ, फिर वो ज्ञान हो। ज्ञान के लिए कहते हैं, ज्ञान तलवार है, ज्ञान रोशनी है, रोशनी में क्लैरिटी है, ज्ञान में क्लैरिटी है, इन्फॉर्मेशन में क्लैरिटी नहीं है। ज्ञान तलवार है, उसमें ताकत है तोड़ने की, मारने की, ज्ञान में ताकत है इल्यूजन को तोड़ने की, भ्रांतियों को तोड़ने की ताकत ज्ञान में है। लेकिन ज्ञान भी पर्याप्त नहीं है, ज्ञान फिर विजडम में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। विजडम में कैसे परिवर्तन होगा? इसलिए कहते हैं ही इज अ वाइज मैन, कहते हैं इंटेलेक्चुअल और वाइज में अंतर है। इंटेलेक्चुअल बहुत नॉलेज है उनके पास, ज्ञान बहुत है, लेकिन वाइज व्यक्ति कौन है? जो अनुभव है उसके अंदर, वो ज्ञान को जिसने धारण किया हुआ है, वो कर्मों में उसको वो दिखाई दे रहा है। मैं बहुत लंबा छोड़ा भाषण कर सकती हूँ क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, क्रोध से क्या हानि होगा, लेकिन बाहर जाते ही मैं क्रोध करना शुरू करूं, मैं केवल पंडित रह जाऊंगी, लेकिन फिर ज्ञान है ना। तो वाइज व्यक्ति वो है जो ज्ञान है वो अपने जीवन में धारण किया हुआ हो, और धारण करने से क्या होगा, वो अनुभव बढ़ता जाएगा। इसीलिए कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग घर में रहना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उनके पास जीवन के कुछ ऐसे अनुभव है जो यंगस्टर्स में नहीं है। जीवन उनने जिया है, वो विजडम है ना। तो वाइज व्यक्ति तो, और ये भी नहीं है कि सभी बुजुर्ग वाइज हो, ये भी जरूरी नहीं है, और सभी यंगस्टर्स वाइज नहीं है वो भी जरूरी नहीं है। यंग एज में ही बहुत वाइज बन सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से, जैसे विवेकानंद जी बहुत यंग एज में ही वो वाइज बन गए थे। जिंदगी को बहुत नजदीकी से जब ऑब्जर्व करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को अप्लाई करना शुरू करते, केवल सुपरफिशियली हम नहीं देखते हैं लेकिन आध्यात्मिक रूप से डीपली हम जिंदगी को देखना शुरू करते हैं, तब वो विजडम बढ़ना शुरू होगा। जितना जितना विजडम बढ़ता जाएगा, परखने की शक्ति, व्यक्ति को देख करके ही हम परख सकते हैं व्यक्ति कैसा है, उसके हाव भाव को देख करके ही हम देख सकते, उसके बॉडी लैंग्वेज को ही देख करके, वाइब्रेशंस को महसूस करके समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है ना। विजडम, जितना स्पिरिचुअलिटी बढ़ता जाएगा, मेडिटेशन हम करते जाएंगे, यहाँ क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, फिर परखने की शक्ति जिंदगी में बढ़ता जाएगा। और नेक्स्ट है पावर टू डिसाइड, निर्णय करने की शक्ति। जितना हम परखते हैं उसके आधार से हम निर्णय लेते हैं जिंदगी में। सुबह से शाम तक हम बहुत सारे निर्णय लेते, उठते ही हम निर्णय लेना शुरू करते हैं, आज क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, छोटी छोटी चीजें हम डिसाइड करना शुरू करते हैं। छोटी छोटी चीजें अगर थोड़ा बहुत इधर का उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, परोठे के बजाय मैं पोहा खा लूं ब्रेकफास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, व्हाइट की जगह मैं येलो पहन लूं आज कोई नहीं फर्क पड़ता, है ना। छोटी छोटी चीजें उनके कोई फर्क नहीं, लेकिन बड़े बड़े डिसीजंस लाइफ के वो थोड़ा सोच समझ करके हमें डिसाइड करना होगा, क्योंकि पूरी तरह अपनी जिंदगी के जो दिशा है वो बदल जाता है बड़े बड़े डिसीजंस से, है ना। उन डिसीजंस को लेने से पहले थोड़ा सा धीरज, और जो चित्र देख रहे हैं न्याय की देवी, इससे हम कुछ सीख सकते हैं। न्याय की देवी के एक हाथ में तराजू है, दूसरे हाथ में स्वॉर्ड है, और फिर आंखों पर पट्टी है। तराजू माना सोच समझ करके, सच क्या है झूठ क्या है तोल करके, तोल मोल करके हमें डिसाइड करना है, और अनबायस डिसीजंस, किसी के प्रति भी मेरा पार्शियलिटी ना हो, जस्टिस हो हर एक के प्रति, वो सोच समझ करके मुझे तोल मोल करके मुझे फिर डिसीजन लेना है। और फिर स्वॉर्ड, इसका मतलब क्या है, एक हाथ में स्वॉर्ड है तो वो किसका मतलब क्या है, शक्ति है, पनिशमेंट, खुद को पनिशमेंट देना या दूसरों को पनिशमेंट देना है। मैंने पहले बात अभी थोड़े समय पहले मैंने कुछ बोला था, ज्ञान तलवार है, ज्ञान तलवार है, राइट। ज्ञान के आधार से हमें पता चलता है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। ज्ञान के आधार से मैं उसको मार सकूं, जो नेगेटिव है जो गलत है उसको मैं मार के फेंक सकूं, इतनी शक्ति मेरे अंदर होना चाहिए। जैसे अगर थोड़ा बहुत मेरे पांव में जो गैंग्रीन हो गया तो वो फिर डॉक्टर क्या कहेंगे, थोड़ा सा इलाज करना पड़ेगा। अगर थोड़ा बढ़ जाएगा तो क्या कहेंगे, उस फिंगर को काट के फेंकना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर को ओ मैं कैसे फेंक सकती हूँ, मैं वो सिर्फ कैसे काट सकती हूँ, नहीं काटूंगी, अगर उसको रहने दूं तो क्या होगा, पूरे पैर को मुझे काटना पड़ेगा, राइट। वो ताकत होना चाहिए जब जरूरी हो तो अपनी चीज भी मुझे काट के फेंकने की ताकत, इतनी दृढ़ता, इतनी शक्ति अपने अंदर होनी चाहिए। बड़े बड़े डिसीशंस अपने परिवार के कारण से, अपनेपन के कारण से गलत डिसीशंस लोगों ने लिया है, है ना, उस अटैचमेंट के साथ, हाँ डिटैचमेंट के कारण से, हाँ डिटैचमेंट के बाद, अटैचमेंट के कारण से तो गलतियां हो रही हैं, डिटैचमेंट की बात है, हाँ। और तीसरी बात है आंखों पर पट्टी, आंखों पर पट्टी माना अनबायस्ड। क्या आंखों पर पट्टी बांधने से आप अनबायस्ड हो जाते हैं, जाएंगे, अनब्यास हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो गांधारी महाभारत नहीं होता, राइट? आंखों पर पट्टी बांधना, आंखों से देखना बहुत जरूरी है ये कैसा है, उसको परखने के लिए, उसके बारे डिसीजन लेने के लिए आंखों से देखना बहुत जरूरी है। लेकिन आंखों पर पट्टी का मतलब ये है, जो इन आंखों से देख रहे हो उस पर 100% विश्वास नहीं करो, क्योंकि पर्दे के पीछे का सीन बहुत अलग होता है, राइट? थोड़ा सा धीरज, ये थोड़ा सा आप एनालाइज करो, थोड़ा सा देखो क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, समझ करके फिर निर्णय लेना है। जैसे बचपन में एक कहानी हम सुनते थे ना, एक जंगल में एक परिवार बसा था और उनके पास एक छोटा सा बच्चा था, और वो पति जो है हर रोज जंगल में जाते थे, लकड़ी काट करके मार्केट में बेच के फिर वापस आते थे शाम को। रोज दो जो घर में वो पत्नी और एक बच्चा रहता था, और उनके घर में एक मंगूस पाल के रखे थे इन लोगों ने। एक बार वो पत्नी पानी भरने बाहर गई, और जब पानी भर के लेके आई तो क्या देखा, मंगूस के जो मुंह पर खून के डब्बे दिखाई दिए उसको। उसने क्या सोचा, खून के डब्बे देख करके सोचा मेरे बच्चे को उसने मार दिया होगा, तो घड़े को उसके ऊपर मार करके अंदर जा करके देखा तो क्या देखा, सांप मरा था और बच्चा खेल रहा था। जो दिखाई दिया वो 100% सच नहीं था, है ना? जो सोचा, वो जो दिखाई दिया उसके बारे में कुछ गलती सोचा, थोड़ा सा वो धीरज धरती ना, अंदर जाके देखती क्या हुआ है, सच क्या है, झूठ क्या है, तो वो सच पता चल जाता था। फिर वो फिर गलत कर्म किया, वो जो देखा सोचा निर्णय किया, और निर्णय के आधार पर उसने कर्म भी कर लिया। कर्म करने के बाद जब उसको सच्चाई पता चला, फिर वो रिग्रेट किया उसने। कई बार हम भी अपने जीवन में ऐसे करते हैं, देख लेते हैं, जल्दीबाजी में निर्णय भी ले लेते हैं, कर्म भी कर लेते हैं, कर्म कर लेने के बाद कुछ दिनों के बाद पता चलता अरे ये तो गलत था, फिर अफसोस, फिर उसको तो उल्टा ना बैक नहीं जा सकते हैं। निर्णय लेते समय थोड़ा सा धीरज, एनालाइज करके जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है उस इंस्टेंट उस पर विश्वास नहीं करें, तो एनालाइज करके फिर निर्णय लेंगे, वो निर्णय फिर यथार्थ हो सकता है। और नेक्स्ट शक्ति है सामना करने की शक्ति, सेवेंथ पावर, सामना करने की शक्ति। सहन करना भी एक शक्ति है, सामना करना भी एक शक्ति है, दोनों अपोजिट है ना? सहन करना सॉफ्ट पावर है, सामना करना फियर्स पावर है ना? दोनों, लेकिन कौन से परिस्थिति में कौन सी शक्ति को हम यूज करें उसका निर्णय आपका यथार्थ होना चाहिए। सामना करने की जगह पर सहन कर लिया, सहन करने की जगह पर सामना कर लिया, गड़बड़ हो गया, है ना? शस्त्रों का प्रयोग, कौन से परिस्थिति में कौन से शस्त्र का प्रयोग करना है आपको समझ होनी चाहिए। तो कब सामना करना है, कब सहन करना है, परिस्थिति को सामना करना है, लोगों को सहन करना है। और व्यक्ति अगर गलत कर रहा है, वो परिस्थिति क्रिएट हुआ है उस व्यक्ति के कारण से, लेकिन परिस्थिति को मुझे ठीक करना है, और व्यक्ति को मैं ये कहूँ, व्यक्ति के प्रति दुश्मनी नहीं है, परिस्थिति के प्रति दुश्मनी है। इसका मतलब है पापी से नफरत नहीं करना है, पाप से नफरत करना है, पापी से रहम करना है, जो पाप कर्म कर रहा है उसके प्रति रहम, लेकिन पाप जो हो रहा है उसको तो सामना करना होगा, है ना? तो इसके वो तो बहुत विस्तार है डिस्कशन के लिए, लेकिन टाइम इतना ज्यादा नहीं है, इतना कंफ्यूजिंग है, इसीलिए थोड़ा उसके बारे में और सोचेंगे आप इसके बारे में कि परिस्थिति को सामना करना है और व्यक्ति को मुझे सहन कर रहे हैं, जो अभी युद्ध के परिस्थितियां हैं, अभी जो हुआ है ना, उसको तो सामना करना ही होगा, लेकिन पर्सनली व्यक्तिगत उस देश के व्यक्ति से हमें नफरत नहीं है, राइट? लेकिन ये चीज हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए वो व्यक्ति उस सिर्फ उन्हीं एरिया को टारगेट किया है, हाँ उन्हीं एरिया को टारगेट किया है, लेकिन जनरली सबको नहीं है ना। पावर टू डिसर्न, या जितना बड़ा लेवल है उसको तो सामना करना ही पड़ेगा। अगर वो कर रहा है तो उस व्यक्ति के कारण से हो रहा है, तो उसके लिए तो हमें यथार्थ मतलब लॉ अनुसार, लॉ का उल्लंघन करके हम फॉलो ना करें, लॉ को फॉलो करते हुए उसको सामना करके फिर उसको यथार्थ एक डेस्टिनेशन उसको उस तक पहुंचाना पड़ेगा, है ना। और नेक्स्ट शक्ति है, और इसमें ये भी दिखाया है पावर टू फेस में एक व्यक्ति सर्व कर रहा है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा वेव है, अगर उसको सर्व करना नहीं आ रहा है तो फिर एंजॉय नहीं कर सकता, है ना। अंदर स्किल होने के कारण से वो एंजॉय कर रहा है। अपने लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े तूफान, बहुत बड़े बड़े लहर आएंगे, लेकिन मैं अगर सक्षम हूं उसको मैं एंजॉय करूंगी, अगर मैं सक्षम नहीं हूं डर के डूब जाए। तो इसलिए अंदर वो सक्षम बनना पड़ेगा। और दूसरी बात है डर को निकालने की, और डर को कैसे निकालेंगे, खुद के क्वालिटीज को पहचानना है, स्वस्थिति में रह करके परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे तो वो डर निकलेगा। और लास्ट शक्ति है पावर टू कॉपरेट, सहयोग की शक्ति। सहयोग को हर एक, सहयोग तो हर एक को चाहिए, हेल्प तो हर एक को चाहिए। हेल्प मांगने से मिलेगा, मांगने से मिलेगा, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, हेल्प मांगने से मिलेगा, क्या कहेंगे, हेल्प मांगने से मिलेगा, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, एक दो बार तो मदद मिल ही जाएगा, मिल भी जाएगा, मदद मांगने से एक दो बार मिल जाएगा, लेकिन फिर लॉन्ग रन में जितना मैं मदद करती जाऊंगी उतना मदद मिलता जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, जिनसे हमें कुछ मिलना होगा ना, उन्हीं की मदद हम करेंगे, जिनसे हमें कुछ मिलना नहीं होगा तो उनको हम मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे तो कुछ मिलना ही नहीं है, राइट है रॉन्ग है, कुछ मिलेगा नहीं तो मैं क्यों मदद करूं उनकी। हाँ, और मैं अगर मैं ये मान लो कि इस व्यक्ति ये बहुत काम का व्यक्ति है, मैं उसकी मदद कर लूं, तो मैं मदद कर लूंगी, आउट ऑफ द वे भी जाकर के उस व्यक्ति की मदद मैं कर लूं, दो साल के बाद जब मुझे मदद की जरूरत होगी तो मैं किसके पास जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, उसी व्यक्ति के पास जाऊंगी जिसको मैंने मदद दी होगी। क्यों उसके पास जाऊंगी मैं, क्योंकि अधिकार लगता है कि मैंने उसकी मदद की थी ना, उसकी बारी है अभी उसको रिटर्न करने की, तो मैं उसी के पास जाऊंगी। अगर वो मदद नहीं करता है तो मैं क्या सोचूंगी, तो सारी दुनिया ही सेल्फिश है, सभी ऐसे है कि मुझे किसी को भी मदद नहीं करना चाहिए, आज से मैं किसी की भी मदद नहीं करूंगी, मैं अपने लिए डिसाइड कर लूंगी कि आगे से मैं किसी की मदद नहीं करूंगी, दुनिया सेल्फिश है, ये राइट है, ये राइट है, रॉन्ग है, क्यों, यहां क्या रॉन्ग गया, क्या रॉन्ग गया इसमें, बिना एक्सपेक्टेशंस के आप कुछ करेंगे, इमेजिनिंग फ्यूचर विच इज नॉट राइट, ओके, बिना एक्सपेक्टेशंस के आप कुछ करेंगे, करते हैं राइट ठीक है, आप यहां आए हैं बिना एक्सपेक्टेशंस के आए हैं, बिना एक्सपेक्टेशंस के आप आया आए हैं, यहाँ आए हैं तो कुछ एक्सपेक्टेशन रख करके आए हैं ना, कि कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगा, मतलब बस स्थूल चीजें नहीं, लेकिन ये एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेशन तो है, मेडिटेशन सीखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो एक्सपेक्टेशन तो है। अगर उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार वो कुछ नहीं होता यहाँ, अगले बार आएंगे आप नहीं आएंगे राइट? आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार कुछ मिल जाता है आपको या फिर उससे ज्यादा भी मिल जाता है तो आप खुश हो जाएंगे, फिर अगली बार भी आप आएंगे, इनके साथ जुड़ेंगे, करेंगे और भी आप कंटिन्यू करेंगे ये सब बातें, है ना। इंसान ऐसा व्यक्ति है जो एक्सपेक्टेशन के बिना कुछ नहीं करता। अगर ये पता चले कि इसके कुछ रिटर्न है ही नहीं तो मैं क्यों करूं, राइट? ये भी बात समझना है कि जब हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है तो ये नहीं रखना है कि उस व्यक्ति से मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है मैं जितना मैं दूंगी उतना मल्टीप्लाई होकर के मुझे मिलेगा। जब ये पता है तभी तो मैं दूंगी। अगर मुझे ये पता नहीं होता कि मुझे मिल, अगर कोई कहे कि आप कितना भी दो कुछ मिलने का नहीं तो मैं क्यों दूं, राइट? तो कर्मों की गुह्य गति ये कहता है कि जितना आप दोगे कई बार 1:1 मिल जाता है, कई बार मल्टीप्लाई होकर के भी मिल जाए, 1:10 1:100 वो मल्टीप्लाई होकर के मुझे मिल जाता है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है उसी व्यक्ति से मिलेगा, कहीं भी नहीं लिखा है। लिखा है ऐसे नहीं, तो हम क्या सोच रहे हैं, इसको दिया तो इसी से मुझे चाहिए, दूसरे से मिल रहा है तो वो नहीं चाहिए, उसी से चाहिए मुझे, ये गलत हो जाता है, राइट? जब ये समझ है मुझे मिलेगा तो मैं निश्चिंत होकर के देना शुरू करूंगी, मुझे पता है कि मुझे जब जरूरत होगी इस व्यक्ति से नहीं तो कहीं से तो मुझे मिलेगा जरूर, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, क्रिएटिंग गुड कर्म विदाउट एक्सपेक्टेशन, मतलब उस व्यक्ति से नहीं मुझे मिलेगा वो सोच करके हम करते जाएंगे, तो इसलिए कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, ना कर्म करते जो फल की इच्छा मत रखो, फल की इच्छा मत रखो मतलब उस व्यक्ति से नहीं रखो, फल की इच्छा तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम कर्म नहीं करेंगे। अच्छा कर्म करते जाए वो फल ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा, तो सहयोग भी हम देते चले सहयोग मिलता जाएगा, है ना। ये है सहयोग की शक्ति, इन अष्ट शक्तियों के आधार से आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाती है। जैसे डायमंड माना जाता है कि ये बहुत हार्ड स्टोन है, और डायमंड को काटने के लिए डायमंड ही चाहिए, पत्थर से या फिर लोहे से काट नहीं सकते, डायमंड को काटने के लिए डायमंड ही चाहिए, और दूसरी क्वालिटी डायमंड की वो उसकी शाइनिंग की स्पार्कल वो बहुत खूबसूरत है, और आत्मा भी बहुत पावरफुल है, बहुत हार्ड है, आत्मा के अंदर बहुत शक्ति है और आत्मा बहुत खूबसूरत है, उसकी रोशनी उसके प्रकाश, है ना। तो हर आत्मा डायमंड समान है, लेकिन डायमंड पहले जब ओर जब खान से निकलता है ना, जैसे काला पत्थर देख रहे हैं ऐसा दिखता है, लेकिन उसी पत्थर को थोड़ा सा काट करके थोड़ा सा पॉलिश करेंगे तो फिर उसकी जो स्पार्कल है उसकी जो शाइनिंग है वो फिर फैलता है। ऐसे ही हम आत्माओं के अंदर भी सर्व शक्तियां हैं, लेकिन अभी क्या जरूरत है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज, थोड़ी सी ये थोड़ा सा शाइनिंग थोड़ा सा पॉलिशिंग की जरूरत है, तो फिर आप देखेंगे आत्मा की जो स्पार्कल है वो फिर फैलता शुरू हो जाएगा। सिंपल है, सुनने में तो सिंपल लग रहा है लेकिन हर रोज जब हम करते जाएंगे तो आप देखेंगे धीरे 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 आत्मा की जो शक्तियां हैं जो प्रकाश है वो फिर बढ़ता जाएगा, आपकी जो एफिशिएंसी है कर्म क्षेत्र पर
वो फिर बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये है अष्ट शक्तियों की बात। ओम शांति।